ಸುಧಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಜನರಂಜನ ಜಮುನಾ ತೀರವನ ಚಾರಿ ಜಮುನಾ ತೀರ ಹರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಸಭಿ ಗಾಯಿ ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ 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 ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ಹರೆ ಜಯ ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ರಾಧೆ ಜಯ ರಾಧಾ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಸುಂದರ ರಾಧೆ ಜಯ ಗೌರಾಣಿ ತಾಯಿ ಜಯ ಪಂಚತತ್ವ ಗೌರಾಣಿ ತಾಯಿ ಜಯ ಪಂಚತತ್ವ ಗೌರಾಣಿ ತಾಯಿ ಜಯ ಪಂಚತತ್ವ ಜಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಜಯ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ ಜಯ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ ಜಯ ರಾಮ ಜಯ ವೃಂದಾವನ ಧಾಮ ಜಯ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಯ ಬಲದೇವ जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी नयन पथ गामी भव तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी पथ गामी भव तुम्हें जय जय प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद प्रभु पाद जय जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की गुरु परम्परा की रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सठ गोस्वामी प्रभु की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय वृंदावन मथुरा धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय संवेद भक्त वृंद की जय युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नित्य श्री कृष्ण बलराम की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय निताय गौर हरि प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटी हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज गुरु एन गौरंगा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय आत्मात्मजाप्त गृहवित जने सुसक्ते दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमयेश्वराय आत्मात्मजाप्त गृहवित्त जने सुसक्ते दुष्प्रापणाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्मभिस्वहृदये परिभाविताय ज्ञ जनात्मने भगवते नमेश्वराय आत्माप्त जाप्त गृह वित्त जने सुसक्ते दुष्प्रापनाय गुण संग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमेश्वराय जी के द्वारा शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य आत्मा मन तथा शरीर आत्मज पुत्र तथा पुत्रियां आप्त मित्र तथा संबंधी गृह घर जाति समाज तथा राष्ट्र वित्त धन जनेसु विभिन्न दास तथा सहायक तक सक्तय आसक्त लोगों द्वारा दुष्प्रापनाय आपको जो दुष्प्राप्य हैं गुण संग भौतिक प्रकृति के तीन गुणों द्वारा विवर्जिताय कलुषित न होने वाले को मुक्तात्म भी पहले से मुक्त हुए पुरुषों के द्वारा स्वहृदये अपने हृदय के भीतर परिभाविताय ध्यान किए जाने वाले आपको ज्ञान आत्मने समस्त ज्ञान के आगार भगवती श्री भगवान को नमः। मैं सादर नमस्कार करता हूँ ईश्वराय परम नियंता को। हे प्रभु, जो लोग भौतिक कल्मश से पूर्णतः मुक्त हैं, वे अपने अंतःस्थल में सदैव आपका ध्यान करते हैं। आप मुझ जैसों के लिए दुष्प्राप्य हैं, जो मानसिक तर्क वितर्क घर संबंधियों मित्रों धन नौकरों तथा सहायकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। आप प्रकृति के गुणों से निष्कलुषित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। आप सारे ज्ञान के आगार परम नियंता हैं। अतएव मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं, किंतु वे भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। इसकी पुष्टि इस उपनिषद द्वारा होती है, अपाप विद्धम, वे कलुषित नहीं होते। इसी तथ्य को यहाँ पर बताया गया है, गुण संग विवर्जिताय। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 9.11 में कहा गया है, अब जानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितिम। कम बुद्धि वाले मूर्ख लोग श्री भगवान का उपहास करते हैं, क्योंकि वे एक मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं। अतः मुक्त आत्मा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। मुक्त आत्म भी स्वहृदये परिभाविताय। केवल मुक्त आत्मा ही भगवान श्री कृष्ण के विषय में निरंतर चिंतन कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सबसे बड़ा योगी होता है। श्रीमद् भगवद गीता 6.47, योगी नाम अपि सर्वेषां मद गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सौ में मुक्त युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में से जो योगी दिव्य प्रेमा भक्ति से युक्त होकर मुझ में स्थित रहता है, मेरी पूजा करता है और वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक युक्त हो जाता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वं भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नित्य श्री कृष्ण बलराम श्री श्री वृंदावन धाम और यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णवी गण हैं सभी के श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और उन्हीं से कृपा की याचना करता हूँ। मैं बहुत ही परम भाग्यशाली हूँ जो श्रीमद् भागवतम को मुझे दोहराने का ये परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन ये सौभाग्य तभी रहेगा जब आप सब वैष्णवगण मुझ पर कृपा करेंगे, क्योंकि मुझ में ऐसी कोई योग्यता नहीं जो भागवतम मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं, जिनको श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वयं भगवान शिव भगवान अनंत अनंत समय से भगवान के गुणों की चर्चा करते आ रहे हैं। ऐसे चरित्र का मैं एक बूंद भी टच नहीं कर सकता, इसलिए आप सब वैष्णवगण वैष्णवीगण मुझ पर कृपा करें ताकि मेरे मुख से उसी वाणी का प्रयोग हो जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो। आप सब वैष्णवगण यहाँ पे गजेंद्र स्तुति की पाठ श्रवण करते आ रहे हैं और आज ये 18वां श्लोक है इस श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय का नाम है 3 और गजेंद्र की समर्पण स्तुति और श्लोक क्रमांक है आज का 18 नंबर। लगातार आप लोग सीरियल में गजेंद्र की स्तुति सुनते आ रहे हैं। एक बात यहां पर मैं समझना है, जो ये जो गजेंद्र है, जब मैं खास करके मैं इस श्लोक को जब मैं पढ़ रहा था, ऐसे कई बार पढ़े लेकिन रात में जब बोलने के लिए तैयारी करने के लिए पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था इसमें जितने सारे अवगुण हैं जो बता रहे हैं वो सारे सारे मेरे अंदर में ही है। एक जो जीवात्मा इस धरती पे आता है भगवान से बैर करके भगवान का ही अंश होकर के, उनका निज कर्तव्य होता है भगवान की सेवा करना, लेकिन इस भगवान की बहिरंगा शक्ति त्रिगुणमयी माया शक्ति के द्वारा वो बंध करके फंस जाता है व्यक्ति, और यहां पर में वो फंस करके छटपटाता है और उसी बिहुवल अवस्था की ये प्रार्थना है। जैसे कि गजेंद्र एक हाथी के स्वरूप में है, अभी गजेंद्र में भी आत्मा है, गजेंद्र के अंदर जो आत्मा है वो एक हाथी रूपी शरीर के अंदर है, हाथी रूपी आवरण के अंदर है। हम सब मनुष्य हैं तो एक मनुष्य के आवरण, ये शरीर मतलब एक आवरण कवर, ढकने वाला कवर, जैसे एक तलवार को ढकने वाला उसका मयान तलवार का कवर होता है, वैसे ही हमारे आत्मा जीवात्मा को ढकने का एक कवर ये मनुष्य का शरीर हमें मिला हुआ है। तो गजेंद्र इतने भाग्यवान हैं जो उस विकट परिस्थिति में भगवान को याद कर पा रहे हैं, लेकिन हम सब खास करके मैं जो इतना निरीह मूर्ख प्राणी हैं, जो यहां पर मैं कष्ट भोगते हुए भी फिर भी इसी दुख की स्थिति में कष्टों में हम आनंद ले रहे हैं, हम उस मधुमक्खी की तरह, हम उस क्या बोलते हैं बीच मझधार में फंसे हुए उस व्यक्ति के समान है जो वो नीचे अजगर है, नीचे अजगर है और ऊपर जो है मधु का शहद है और बहुत सारे काल उसको खाने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति पेड़ के टहनी पे लटका हुआ व्यक्ति उसको कुछ समय के बाद उसको मधु का एक बूंद मिलता है तो उसको चाट करके इतना आनंदित होता है, इतना आनंदित होता है, और उसका ध्यान रहता है अब कब मुझे मधु का वो रस मिलेगा। और नीचे मृत्यु है, ऊपर मृत्यु है, कहीं कुछ पता नहीं। हम लोग भी उसी तरह से यहां पे फंसे हुए हैं। हमारे चारों तरफ हर पल हर क्षण काल हमारे ऊपर में अटैक किए हुआ है, लेकिन हम उसको बिना लापरवाह तान चदरिया परे रहे क्या कचमचिया कचमच करे। हम लोग ऐसे निरंतर हैं सोए हुए जो हमें कोई गम नहीं है। इसलिए इस श्लोक के अंदर में गजेंद्र ऐसे भस्तुति कर रहे हैं और अपनी अक्षमता को प्रदर्शित कर रहे हैं, जो मैं इस जगत में जकड़ा हुआ हूं, फंसा हुआ हूं, मैं भला आपको क्या याद कर सकता हूं, मैं भला आपको कैसे प्राप्त कर सकता हूं। ये श्लोक यहां पर मैं बता रहे हैं। एक बार मैं श्लोक को फिर से अनुवाद पढ़ देता हूं। हे प्रभु, जो लोग भौतिक कलमश से पूर्ण जैसों के लिए दुष्प्राप्य हैं, यानी कि प्राप्त नहीं किए जा सकते, जो मानसिक तर्क वितर्क घर संबंधियों मित्रों धन नौकरों तथा सहायकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। देखिए कह रहे हैं हम ऐसे जीव हैं जो इस जगत में आकर के पूर्ण रूपेण कहां फंसे हुए हैं, देह में। आत्मा कभी भी देह को छोड़ना नहीं चाहता है। इस देह को कितना भी कष्ट मिलता रहता है फिर भी आत्मा इसी में सुकून ढूंढता रहता है, उसी में रहता है। तो कह रहे आत्माप्त जाप्त गृह वित्त जनेशु सकते। तो देखिए आत्म मतलब अपने आप में, आत्म मतलब मन शरीर दोनों, आत्मा का प्रयोग मन के लिए भी होता है शरीर के लिए भी होता है। अगर आत्म आप आत्मज, आत्मज का मतलब है जो पुत्र या पुत्रियां, जो शरीर में या अपने पुत्र या पुत्री में जाप्त। गृह वित्त जनेशु, गृह का मतलब होता है घर, जहां पे हम लोग रह रहे हैं उस घर में। वित्त, वित्त मतलब ऐश्वर्य धन संपत्ति, जो शरीर के द्वारा कमाया हुआ धन। जनेशु, जनेशु का मतलब होता है जो हमारे फॉलोअर जो हमें मानते हैं। करे सकते उसमें जो व्यक्ति आसक्त होता है ना, उसको क्या गति होता है, दुष्प्राप्नाय, वो प्राप्त नहीं कर, दुष्कर होता है। किसको प्राप्त करना, भगवान को, वो भगवान को जो गुण संग विवर्जिताय, वो गुणों में संग नहीं करता कभी भी। हम सब जीवात्मा जब इस धराधाम पे आते हैं तो भगवान की जो प्रकृति की ये जो तीन गुण है ना, उसमें ऑटोमेटिक चले आते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, लेकिन भगवान है गुणातीत, उनसे ऊपर है। इसलिए भगवान कह रहे हैं गुण संग विवर्जिताय, गुण संग विवर्जिताय का श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में एक शब्द बता रहे हैं ईशोपनिषद से, अपाप विद्धम। भगवान इस जगत में उनको बोला जाता है अपाप विद्धम, यानी भगवान को कोई क्लेश कोई पाप टच नहीं कर सकता। भगवान देखिए हम सब की रक्षा करने के लिए, भक्तों को नास्तिकों का नाश करने, आस्तिकों की रक्षा करने के लिए, भक्ति का संवर्धन करने के लिए इस जगत में आते हैं। लेकिन इस जगत में आकर के भी यहां पे फंसते नहीं है, अलग रहते हैं, इन सब गुणों में कभी नहीं फंसते। हम सब किस पे फंसे हुए हैं, प्रकृति के चंगुल में आकर के, प्रकृति के तीन गुण के चंगुल में आकर के हम हमेशा फंसे रहते हैं। हम सब ऐसे बंधे हैं ना, हमारे हाथ पैर में कहीं बंधन दिख नहीं रहा, लेकिन हम पूरे क्या बोलते हैं, ऐसे जंजीरों से जकड़े हुए हैं ना, जो घूमते फिरते कहीं भी हो, घूम फिर करके हम कहां आ जाते हैं, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। कहीं भी घर, कहीं भी घूमते घामते आप घूम फिर करके इसी घर में आना है, इसी परिवार के पास आना है, उसी पत्नी के पास आना है, उसी बच्चे के पास, समाज, राजनीतिक, इन सब चीजों में जो व्यक्ति फंसा रहता है, तो कह रहे भगवान अपाप विद्धम है, भगवान को कोई पाप टच नहीं कर सकता। तो कह रहे ऐसे भगवान को मुक्तात्म भी जो अपाप विद्धम, लेकिन भगवान देखिए इस जग में, हमें लगता है कभी कभी जो भगवान इस धरती पे मनुष्य बनकर के जन्म लेते हैं ना, तो यहाँ पर मैं श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक श्लोक कोट कर रहे हैं, जो अब जानंती माम मूढ़ा, यहाँ पर मैं कह रहे हैं ना, अब जानंती माम मूढ़ा, उसके बाद क्या, मानुषिम तनु आश्रितम परम भावम न जानंतो, करे अब जानंती माम मूढ़ा तनुम आश्रितम, करे अब जानंती माम मूढ़ा, जो भगवान को, ये जो भगवान मनुष्य के शरीर लेकर के प्रकृति के गुण के बीच में सारा का सारा क्रियाकलाप करते हैं, लेकिन कह रहे जो व्यक्ति यहाँ पर में है जिसको ज्ञान नहीं है, वो व्यक्ति भगवान को भी अपने ही समान समझ लेता है और उनको कोई बड़ा पर्सनैलिटी नहीं समझता है। कह रहा हूं हो सकता है उच्च कोटि, देखिए भगवान जब इस धराधाम पे थे उस समय में दुर्योधन सारे कौरव सभी के सभी थे, लेकिन भगवान ऐसे विलक्षण विलक्षण कर्म, अद्भुत कर्म ना, ऐसे ऐसे कर्म किए, फिर भी कभी उसके मन में ये नहीं आया जो ये श्री कृष्ण भगवान है। लेकिन वही कुंती महारानी, वही द्रोणाचार्य जी और वही हमारे भीष्म पितामह जी, ये सब भक्तों को, पांडव लोग भगवान को जानते थे, ये भगवान क्या है, गुणातीत हैं। भगवान यहाँ पर में कुछ विशेष पर्पस से लीला करने के लिए आए हैं, तो इन जीव कहते हैं अपाप विद्धम, उनको पाप टच नहीं कर सकता। तो भगवान इस जगत में कैसे आते हैं, तो कुंती महारानी एक प्रार्थना करते हैं, नटो नाट्य धर्म धरो यथा, भगवान इस जगत में ऐसे आते हैं मनुष्य के शरीर में जैसे एक कोई मनुष्य एक किसी विशेष रोल में कलाकारी करने के लिए स्टेज पे आता है परफॉर्म करने के लिए, और वो इतना बढ़िया से कलाकारी करता है जो सामने वाले जितने श्रोता हैं, दर्शक हैं, उन कलाकार को देखकर के, नाट्यकार को देखकर के जैसे लगता है ये वही व्यक्ति है जो ये कला कर रहा है, ये वही व्यक्ति है, वो इतने एक्सपर्ट होते हैं ना, जो उस कला को करने में लोग ये आभास तक नहीं लगा पाते हैं जो ये व्यक्ति कोई दूसरा है। तो ये भगवान की कलाकारी है, भगवान इस जगत में मनुष्य के शरीर में आकर के भी नटो नाट्य धर्म यथा ऐसे काम करते हैं, ऐसे लीला को प्रदर्शित करते हैं, जो व्यक्ति जो गुणों में फंसा हुआ है ना, वो व्यक्ति भगवान को नहीं जान पाते। अब जानन्ति माम मूढ़ा, नान क्या कर उसको बोलते हैं, भगवान जो है ना उसको देख नहीं पाते हैं। तो कौन देख सकते हैं, भगवान को वही व्यक्ति देख सकता है जो इस जगत में नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, तो ज्ञान के जो चक्षु से भगवान को देख सकते हैं। तो इस जगत में गुण में नहीं फंसना है हमें, किसी रिलेशन में नहीं फंसना है, इससे हमें क्या समझ में आता है, इस जगत में रहें, हमें जब इस जगत में शरीर धारण किए हैं तो हमें ये सब काम करना पड़ेगा, लेकिन हमें इससे आसक्ति नहीं रखना है, आसक्ति को हटा करके भगवान के लिए हमेशा हमेशा जो है सेवा करने में अपने आप को लगाना है। देखिए जैसे ही हम इस शरीर को ग्रहण, हम इस जगत में धीरे धीरे फंसते जाते रहते हैं। शरीर ग्रहण करना, जब तक हम भगवान के धाम में थे, भगवान के धाम में थे, हम भगवान के गर्भ में भी रहते हैं, कई ऐसे जीवात्मा गर्भ में रहते हैं जो भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं जो मुझे इस गर्भ से निकालो ताकि मैं आपका भजन करूंगा, लेकिन जब तक भगवान इस कंटेमिनेटेड शहर में, कंटेमिनेटेड जगत में नहीं आया है ना, तब तक जीव ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही इस जीव जगत में आता है, यहाँ पर मैं आकर के भगवान का स्मरण करना, भगवान का भजन करना उसके जीवन में आता ही नहीं है। लोग अपने कामों में, अपने रिलेशन में, अपने संबंधियों में, अपने शरीर में, अपने बच्चे में इतना ज्यादा आसक्त हो जाता है, उसके भरण पोषण में इतना ज्यादा लग जाता है ना, लोग किसी तरीके से भगवान के तरफ मुख मोड़ता ही नहीं है। गजेंद्र जी अपने आप में बता रहे हैं, जो मैं देखिए गजेंद्र जी क्या किए, उनको गर्मी लगा और वो सरोवर में जाकर के स्नान करने लगे। ठीक है, गजेंद्र जी को गर्मी लगा शरीर को तो वो स्नान करने के लिए चले गए। भैया स्नान करने के लिए गए तो अपने बच्चे बच्चियों पत्नियों को लेकर के क्यों इतने सारे लेकर के चले गए। ठीक है, आपने सभी को लेकर के आप स्नान भी कर रहे हैं, अब क्या जरूरत है जो घंटों स्नान कर रहे हैं हम, और घंटों स्नान भी कर रहे हैं और अपने सूर से पानी उलझ उलझ करके दे रहे हैं। तो अब वो व्यक्ति इतना अपने पत्नी में, अपने बच्चे में, नन्हे मुन्ने बच्चे जो हथिनिया के जो बच्चे थे, तो वो गजेंद्र मैं ही हूं। हम सब इस समाज में इतने ज्यादा आसक्त है ना, देखने को लगता है हम ये कौन सा गेरुआ वस्त्र बोलते हैं, सैफुरन वस्त्र, सैफुरन वस्त्र पहन लिए हैं, लेकिन हमारी आसक्ति अब भी अपने रिलेटिव में, अपने घरों में कई बार फोन करते हैं, हाउ हेलो हाउ आर यू, क्या क्या करते रहते हैं, हमारी आसक्ति उधर लगी हुई है, क्योंकि हम लोग यहां पर में इस गुण से फंसे हुए हैं। कितना प्रयास करें तो इससे हमें निकलना है। भगवान के लिए हमें आसक्ति को लाना है अपने अंदर में। तो ये गजेंद्र जी अपने आप के बारे में बता करके हम सबको उपलक्षण दे करके बता रहे हैं, जो हम जैसे ही इस शरीर में लेते हैं, रहते हैं, तो देह से संबंधित एक रिलेशन पैदा होता है, तो हम समझने लग जाते हैं क्या ये हमारे शरीर के द्वारा, ये जो उत्पन्न आत्मज है ना, ये हमारा है, ये हमारी रक्षा करेगा, ये हमारे द्वारा कमाया हुआ जो धन है ना, ये हमें रक्षा करेगा, ये हमारे द्वारा जो ये नेम फेम जो समाज में हमने इकट्ठा किया है ना, वो हमें अंत समय में बचा पाएगा। इतना लोग व्यस्त रहता है ना, उसके पास भगवान के लिए भी थोड़ा सा भी समय नहीं होता है। आप देखो इस समाज में कई लोग ऐसे हैं जो एक नौकरी से अगर पेट नहीं भरता है ना, तो दो नौकरी पकड़ लेता है। अपने समय को 24 घंटा को उन्होंने ऐसे बांट लिया है जो एकदम नौकरी करने में, नौकरी करने में उनका समय बचता ही नहीं है, तो भगवान की क्या याद करेगा। अभी हम लोग भगवत गीता का जब प्रचार करने के लिए रोड पे निकलते हैं, तो कई एक व्यक्ति बोल रहा था, अभी हमारा समय नहीं हुआ भगवत गीता पढ़ने का, तो 65 साल का व्यक्ति था, चाय बेच रहा था, तो अभी हमारा समय नहीं हुआ भगवत गीता पढ़ने का। तो मैंने बोला, प्रभु जी कौन सा समय आएगा, अब जब आप क्या कहते हैं पूरी तरह से श्मशान में चले जाओगे तब तो मुझे जब मैं प्रचार करता हूं तो मुझे डर नहीं लगता है, मुझे जो बोलना होता है शास्त्री बस मैं बोल देता हूं। तो कह रहे जब मर जाओगे एक पैर तो वैसे ही आपका कब्र में है, और तब बोल रहे अभी आपको गीता पढ़ने का समय नहीं हुआ, बताओ अब कब पढ़ोगे। तो व्यक्ति वो तो चाय बेचता रहे, जिंदगी बीत गई आपकी चाय बेचते बेचते, लेकिन गीता की तरफ नहीं। देखो लोगों को 60 साल की उम्र दी गई है, उसके बाद क्या करते, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या करते हैं, बंगाल में ज्यादातर लोग मछली पालन की बिजनेस शुरू कर देता है, वो जाकर के क्लब में इधर उधर ताश खेलता रहता है, टीवी थिएटर चैनल पे चैनल घुमाता रहता है, लेकिन आप बोलोगे आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, आई हैव नो टाइम, गीता पढ़ने का समय ही नहीं है। समझ रहे हैं, पूरा का पूरा दिन अपने आप को लगा देता है। इसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, गृहस्थ नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गृहमेदी। तो भागवतम के सेकंड कैंटो के प्रथम अध्याय में ना बहुत सुंदर, मुझ जैसे प्रतीत प्राणी के लिए बहुत ही बढ़िया से बता रहे हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के माध्यम से। देखिए कितना अच्छा चीज बता रहे हैं, भागवत गीता भागवतम का दूसरा स्कंद का पहला अध्याय का दूसरा श्लोक, श्रोतव्यादि निराजेन्द्र नृणाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्म तत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। इस जगत में जो व्यक्ति बोलता है आई हैव नो टाइम गीता पढ़ने का समय नहीं है, मैं जो है ना 8 बजे उठता हूँ, 8:30 बजे तक मुझे ऑफिस पहुंचना होता है, और घर में मैं 10:30 बजे रात में पहुंचता हूँ, और उसके बाद कुछ खाना उना मिलता है और फिर सो जाता हूँ। तो गीता पढ़ने का प्रभु जी आप ही बताओ मेरे पास समय है? तो कह रहे आपके पास तो नहीं समय है प्रभु, अब ऐसा करो अपना रजाई ओढ़ करके सो जाओ। तो कह रहे सोता व्याधिनि राजेंद्र, कह रहे देखिए भगवान ये यहां पर मैं श्रील सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, जो उसको जब आत्म तत्व के विषय में जब उसको बताए ना, वो उसके विषय में सुनना नहीं चाहता है। भागवतम की जब कथा होती है ना गांव घर में तो बहुत कम लोग आते हैं, और हजारों हजारों मान लो करोड़ों करोड़ों की जनसंख्या है, उसमें मुश्किल से 500-700 लोग भागवतम सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि आत्म तत्व के विषय में जहां पे भी जानकारी मिलता है ना वहां सुनने के लिए व्यक्ति नहीं आता है। लेकिन वही मुजरा डांस अगर कर दिया जाए ना तो देखो ना कितने सारे लोग बिन बुलाए मेहमान आप भागवतम के लिए निमंत्रण पत्र कार्ड बढ़िया से पैसा खर्चा करके कार्ड बंटवा दो, आपको नहीं आएगा सुनने के लिए। लेकिन आप एक डांस प्रोग्राम रख दो ना, देखो बिना इनविटेशन कार्ड के ऑटोमेटिक आ जाएंगे, समझ रहे ना। तो हमारी जो है ना कह रहे हैं इस जगत के जो गृह मेधी व्यक्ति है ना उसके हजारों हजारों विषय हैं सुनने के लिए, टीवी चैनल घुमाता रहेगा, राजनीतिक विषय मोदी जी के बारे में, इसके बारे में, किसके बारे में, क्या क्या चीजें, अनाप शनाप ताश खेलना, क्या क्या गेमिंग करना, सब कुछ करता रहेगा। लेकिन वो व्यक्ति परम सत्य के विषय में जानने के लिए कभी भी उत्सुक नहीं होता है, और वो व्यक्ति का ऐसा जो गृहमेधी व्यक्ति है वो अंधा बना हुआ होता है। जो हम कैसे धन का उपार्जन करे, उस व्यक्ति का दिन रात कैसे गुजरता है? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। श्रील सुखदेव गोस्वामी बता रहे हे राजन, हे परीक्षित महाराज, आप इस बात को समझिए जो गृह मेधी व्यक्ति होते हैं ना, जो ऐसे व्यक्ति जो अभी आपको मैंने बताया, ये व्यक्ति का क्या होता है? दिवाचार्थे हयाराजन, उसका जो दिन है ना नौकरी करने में बीत जाता है, धन का उपार्जन करने में बीत जाता है, और कुछ समय अगर बीता रहा ना तो कुटुंब भरने नवा, अपने संबंधियों को बच्चों को भरण पोषण उसका मेंटेनेंस करने में उसका समय गुजर जाता है। तो कह रहे निद्रया ह्रियते नक्तम, उससे अगर थोड़ा सा समय मिला तो रात को आकर के सोने की तैयारी करता है। निद्रया ह्रियते नक्तम, रात्रि में सोने के लिए लग जाता है, या नहीं तो व्यवायन चवा भैया, वो अपने समय को उम्र को कैसे गुजरता है? या तो रात को सोने में, या अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध करने में, और दिन को रुपया पैसा कमाने में, अपने कुटुंब का भरण पोषण करने में पूरा का पूरा समय लगा देता है, अपनी उम्र पूरा लगा देता है, लेकिन भगवान के तरफ एक मिनट भी ध्यान नहीं देता। श्री ये गजेंद्र जी भी यही बात बता रहे हैं, जो मैं अपने पत्नी हथनियों ये सब चीज अपने सारे के सारे चीजों में आसक्त हूं, तो मैं कैसे भला आपका याद कर सकता हूं? गजेंद्र जी को तो कम से कम आत्मग्लानी हो रही है, लेकिन मुझ जैसे अधमपति को मैं इसी में रह करके ये भी आत्मग्लानी नहीं हो पा रहा है, जो मैं यहां पर मैं फंसा हुआ हूं। भगवान के तरफ मुंह करना चाहिए। देहपत्य कलत्र आदिसु आत्म सैन्यु असत्स्वपि तेसाम प्रमतो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। ये जो आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति है ना, ऐसे जो गृहमेधी व्यक्ति है, जो भगवान के विषय में कभी भी नहीं सोचता, अपने जीवन की समस्याओं के विषय में कभी भी, उसके समस्याओं को निपटारा करने के लिए कभी भी नहीं सोचता, वो व्यक्ति किस में अपना समय व्यतीत है? शरीर, बच्चे, पत्नी। ये शरीर, बच्चा और पत्नी, ये जो तीन धन जो है ना, इसको अपना सैनिक समझता है। ये जो व्यक्ति है ना अपना सैनिक समझता है, जैसे एक कैप्टन के कई सारे सैनिक होता है ना, तो जो मूर्ख कैप्टन होगा ना वो ये सोचता रहता है ये सब जो हमारे सैनिक है ना हमें अंत समय में ये बचाएगा। तो ये जो व्यक्ति है ना गृहमेधी व्यक्ति, ये व्यक्ति अपने शरीर को, बच्चे को, पत्नी को, धन को, इस सब को अपना सैनिक समझता है जो अंत समय में हमें ये बचाएगा। लेकिन इसमें सब अनुभव से अनुभव युक्त व्यक्ति भी पश्यन नपि न पश्यति, देख करके भी अनदेखा करना पड़ता है, देख करके भी व्यक्ति यहां पर में फंस जाता है। तो इतना ज्यादा बुरा हालत है हमारा जो हम भगवान में आसक्ति नहीं ला पा रहे हैं, केवल और केवल इस समाज में, समाज के चीजों से अपने द्वारा धन आप अर्जित किए। न धनम न जनम न सुंदरीम, भगवान को प्राप्त करने का क्या तरीका बता रहे हैं हमारे महाप्रभु, बता रहे न धनम न जनम न सुंदरी। और यहां पर मैं क्या कर रहे हैं गजेंद्र जी, हम इस धन में आ सकते हैं, अपने जन अपने फॉलोअर्स में आ सकते हैं। भाई हमारा भाई पूजा करता है, हमारे भी शिष्य हैं भाई, हमारे मानने वाले हैं, हमें भी प्रणाम करता है, तो हम उसी में मदमस्त रहते हैं और इतना मदमस्त हो जाते हैं ना, हमारे ऊपर जो मृत्यु रूपी काल अटैक किए हुए है, कभी भी दबोच सकता है हमारा गला, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं रहता है। तो यही गजेंद्र जी इस उपलक्षण देकर के कह रहे हैं, हे गजेंद्र जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान आप तो गुणातीत हैं, मैं तो इस घर में, पत्नी में, बच्चे में आसक्त हूं, आपका तो वही व्यक्ति भजन कर सकता, आपको वही प्राप्त कर सकता है, मुक्तात्मी स्वहृदय परिभाविताय, आपका वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता जो मुक्तात्मी आत्म भी है, जो मुक्त है, जो व्यक्ति यहां पर मैं बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में, योगी नाम अपि सर्वेशां मद गति अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सौमे युक्त तमो मत। जो व्यक्ति जो भगवान को निष्काम प्रेम भक्ति में अपने आप को भक्ति में लगाए हुआ है ना, वो व्यक्ति जो ना पूरा निरंतर भगवान का ध्यान करता है, अपने आचार्यों के द्वारा जो भी उनको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, श्रील गुरुदेव के द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, प्रभुपाद जो भी हमें दे रहे हैं इंस्ट्रक्शन, उसको अक्षरशः पालन करते हुए भगवान के भजन में अपने आप को लगाना है, तभी जाकर के हम मुक्तात्म भी हो सकते हैं, इन सब आसक्तियों से जाकर के हम हो सकते हैं। एतावान सांख्य योग नहीं, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्ति तव्यस्य स्मर्तव्य इक्षता भयम्। करे हमें भगवान के विषय के बारे में, भगवान के रूप गुण लीला के बारे में उसको सुनना पड़ेगा, श्रवण और कीर्तन, फिर उसको स्मरण करना है, उसको स्मरण करना है, सुनना है और उसको अपने जीवन में अनुपालन करना है। तो हमारी भक्ति जो शुरू होती है वो किससे शुरू होती है, श्रवण और कीर्तन। देखिए भक्ति के 64 अंग है, 64 अंग में कोई व्यक्ति बताइए जो सबसे क्रिटिकल अंग कौन सा है। 3 बजे जग करके ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना ठंडा पानी से, नहीं, 64 अंगों में से जो सबसे जो क्रिटिकल है ना, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना और उसको अपने कानों से सुनना, ये सबसे क्रिटिकल काम है। ये इसी जो भक्ति का 99.99% यही चीज है, इसी को करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी ने अपना पूरा का पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम और पूरे डेज में जो हमें सेवा में लगा करके इंगेज किया हुआ है। किस लिए? हमारा जप कल का सही हो, हमारा जप डिपेंड करता है हमारी आज की चेतना, आज की एक्टिविटीज पे कल का जप हमारा इफेक्ट करेगा। लेकिन हम जप में हमारा ध्यान नहीं होता, जप में जब मेरा ध्यान नहीं होता तभी तो हम सोते हैं। क्या हमें रसगुल्ला खाने में बहुत टेस्टी लगता है, खाते वक्त कभी हम सोए हैं? कभी ऐसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे टेस्टी लगता है रसगुल्ला, तो सो गए, खाते खाते सो जाए। एक बार हमारे गुरुदेव श्रील हिजवलिनेश राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज कथा कर रहे थे बिहार में, तो वहां पर एक व्यक्ति आया और सो गया। तो बड़ा गुरुदेव फिर बाद में पूछ रहे हैं, जो भाई कथा जैसे शुरू हुआ आप सो गए, तो वो व्यक्ति क्या बोलता है, गुरुदेव क्या बताऊं स्वामी जी, आपके कथा में इतना रस आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था ना, जो मेरी निद्रा अटैक कर दिया, मैं सो गया। तो गुरु महाराज बोले, आपको जब इतना आनंद आया तो आप सो गए। आपको अगर रसगुल्ला बहुत अच्छा लगा, उसको खाने के लिए दूं तो क्या आप सो जाओगे? तो बता व्यक्ति फिर नहीं भाई, कैसे रसगुल्ला अच्छा लगता, उसको खाऊंगा पहले। तो देखिए, क्योंकि हमारा विक्षेप, हमारा जो है ना उस शब्द को सुनने, ये जो दिव्य शब्द है ना, प्राकृतिक शब्द तो है नहीं, भगवान का दिव्य नाम, तो उसको सुनने में हमारा कान लगता ही नहीं, इसलिए हमें तो निद्रा आती है। निद्रा आना भक्ति में जो है ये केवल और केवल किसके कारण होता है? हमारा मन का उधर से अलगाव होना। तो एक मनुष्य शरीर में आना हमारा जीवन का क्या निर्धारित कर्तव्य है? एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। एक पुंसाम मनुष्य का जन्म लाभ तभी सार्थक होगा जब वो व्यक्ति अंते नारायण स्मृति, अंत समय में अगर उसको भगवान का स्मरण हो जाए। गजेंद्र जी देखिए विपत्ति में फंस गए तो अंते नारायण स्मृति हुआ ना, क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में भगवान को याद कर चुके हैं, बहुत याद किए हैं। जब हम सब तो कल प्रभु जी को बता रहे थे ना एक क्वेश्चन का आंसर, प्रभु जी जो अभ्यास योगेन कौन्तेय, जब हम जीवन में अभ्यास करेंगे ना जिस चीज का, वही अंत समय में आएगा। अंत काले च मामेव अस्मरण मुक्त्वा कलेवरम, वह तब होगा जब हम शुरू शुरू में जो है भगवान को याद करेंगे, स्मरण करेंगे, बार बार याद करेंगे और भगवान कृपा करेंगे तभी स्मरण में आएंगे, नहीं तो नहीं याद में आएंगे। लेकिन व्यक्ति चाहता है क्या, जो मैं जीवन भर इस टाइट कर देगा, घर वाले बेटी पुतोह और बच्चे भी घर से नकारा कर देंगे। आप दिल्ली शहर में, मुंबई शहर में जाके देखो कैसे बूढ़े बूढ़े व्यक्ति की हालत है, रोते रहते हैं पार्क में बैठ करके। ये बूढ़े व्यक्ति की क्या हालत है? बूढ़ा होना जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, ये जो जरा है ना, ये सबसे खतरनाक चीज है और इतना कष्टदायक होता है, और ये कष्टदायक चीज उसमें कैसे भजन। लेकिन व्यक्ति इतना मूर्ख है जो अपने आप को सोचता है मैं जरा होऊंगा, बूढ़ा होऊंगा, जब सब कोई नेग्लेक्ट कर दे तब भगवान का भजन करे। अरे भाई कौन सी इंद्रिया आपका काम करेगी? आपके हाथ से तो माला उठेगा ही नहीं, आपके पूरा गला तो बंद रहेगा, कैसे आप भगवान का नाम ले पाओगे? तो जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है ना भगवान के दिव्य नामों का, अभ्यास योग युक्ते ना, वही व्यक्ति मुक्तात्म ही बन सकता है। इसलिए हमें कह रहे हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हो, हमें कौमार से बहुत ही मैंने बहुत अल्प समय, जो मैंने अल्प समय नहीं, बहुत ही कम उम्र से ही भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, न कि हमें अंत समय का इंतजार करना चाहिए। क्या किसी के पास कोई बना करके बनाए रखता है? अभी इस साल में ये गाड़ी लिया, इस साल में ये गाड़ी लूंगा, एक फ्लोर की बिल्डिंग बना, पांच फ्लोर की बिल्डिंग इतने साल में कर लूंगा, ऐसे बना बढ़ के इतनी उम्र में ये हो जाएगा, पूरा कैलकुलेशन डायग्राम बना करके रखते रहते। लेकिन वो डायग्राम नहीं बनाते हैं, पर पुंसाम अंत नारायण स्मृति, अंत समय में भगवान नारायण का हमारा याद आए, ये कभी भी नहीं कर पाते हैं। तो समझ रहे ना बात? तो हरेर नामानुकीर्तनम, हमारे जीवन में हरि का नाम आ जाए हमारे जिह्वा पे, ये सबसे ज्यादा उत्तम कोटि की बात। तो अपना फोकस, अपना जीवन का फोकस कहां पे होना चाहिए? भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान के नामों को सुनने में, और श्रीमद् भागवतम को श्रवण कीर्तन में। श्रीमद् भागवतम को श्रवण करें, कैसे श्रवण करें? आत्मदेव ब्राह्मण के पुत्र जो है धुंधकारी, उनके द्वारा जैसे श्रवण किया गया था वैसे सुनना है। धुंधकारी के लिए आ गया ना विमान, विष्णु दूत लेने के लिए आगे, क्यों लेने के लिए आए ये पूछते हैं ना गोकर्ण जी, जब भागवत की महात्म बताते हैं तो गोकर्ण जी पूछते हैं, इतने हजारों आदमियों ने श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, लेकिन बाप विष्णु दूत जी आप विमान तो एक ही लेकर के आए हैं, सबों को लेकर के जाओगे क्या? तो नहीं, मैं तो केवल धुंधकारी के लिए आया हूं। तो ऐसा ये पक्षपात क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हैं बताए जो ये जो धुंधकारी है ना, ये श्रवण किया है, कीर्तन किया है और इसको ध्यासन, इसको मनन किया है भागवतम को। तो भागवतम जो हम, जो हमारे लिए नित्यम भागवत सेव्य श्रील प्रभुपाद की असीम कृपा है, इस कृपा को हम लोग कभी भी नहीं चुका सकते, चाहे हम करोड़ों करोड़ों जन्म क्यों न ले ले। श्रील प्रभुपाद की इतनी कृपा है जो आज हम भगवान की जो बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवतम है उनका साथ कर पा रहे हैं, संग कर पा रहे हैं। स्वयं श्री भागवत में भगवान बसते हैं, भगवान श्री कृष्ण। इस जगत में अगर भगवान हैं तो ये भागवतम में बसते हैं। कलयुग में जीते हुए भी व्यक्ति कलयुग में जी रहा है लेकिन भागवतम का संग कर रहा है, भागवतम के अनुसार अपने जीवन को ढाल रहा है, तो वो व्यक्ति पे कलयुग का कोई असर नहीं होगा। इसलिए भागवतम को श्रवण करके उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है, अनुध्यासन करना है, तब जाकर के हमारा जीवन मुक्तात्म भी मुक्त होंगे। मुक्त होंगे जब, तो क्या होगा, भगवान उस जीवात्मा को फिर अपने धाम के अधिकारी बना लेंगे। समझ रहे हैं बात को? तो मुक्त आत्म भी होने के लिए यहां पर मैं देखिए ना कह रहे, योगियों में वो व्यक्ति सबसे ज्यादा पावरफुल है, सबसे टॉप मोस्ट योगी है जिन्होंने भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न कर लिया है ना। अनासक्तस्य विषयान यथार अहम उपयुंजत निर्बंधे कृष्ण संबंधे, और क्या बोलते हैं, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्यम उच्यते। ये युक्त वैराग्य की परिभाषा बता रहे हैं। अनासक्तस्य विषयान, विषयों का उपयोग करना है। गजेंद्र जी के द्वारा हमें क्या शिक्षा मिल रही है, विषय में हमें आसक्त नहीं होना है, विषय को हमें एक बोट की तरह यूज करना है, एक माध्यम की, जैसे हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है तो इस शरीर को एक माध्यम की तरह यूज करके इसी शरीर से हमें भगवत धाम जाना है। मनुष्य का शरीर केवल और केवल ये जो हमें भगवत धाम को ले जा सकती है, एक कुत्ता के शरीर में हम भगवत धाम नहीं जा सकते क्योंकि उसमें भजन करने का हमें इस तरह की चेतना डेवलप नहीं होती। इसलिए मनुष्य का शरीर वो माध्यम है, इस माध्यम को भगवान को प्राप्ति करने के लिए यूज करना है, न कि इस मनुष्य के शरीर को हम इंद्रिय तृप्ति में झोंक दे अपनी जरूरत में। ये सब सारे चीज वो है ना, आत्मतप्त जाप्त गृह वित्त जनेशु सक्ते, इसमें आसक्ति बना करके ना रख करके हमें भगवान के श्री चरणारविंद में आसक्ति को लगाना है। ये कब होगा, जब मंगल आरती में हम उठेंगे, भगवान के लिए हम तैयार होंगे, भगवान के दर्शन करने के लिए, और भगवान का जब दर्शन करेंगे, भगवान के मंगल आरती में उपस्थित रहेंगे, भगवान की सेवा आराधना पूजा अपने गुरु के निर्देशन में, जब गुरु के निर्देशन में जब भी कोई हम भक्ति करते हैं ना, तो हमारे अंदर में दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हमारे अंदर में ऑटोमेटिक वो भागवत का ज्ञान, वो विषय इस जगत का पूरा ज्ञान ऑटोमेटिक आता है। इसलिए हमारी जो जितना लिमिटेड समय है, मनुष्य के पास सबसे लिमिटेड समय है, इस लिमिटेड समय को केवल और केवल भगवान के भजन में उपयोग करना है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं दिस बर्थ इज द फाइनल बर्थ टू अटेन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये इस बर्थ को हमें अंतिम बर्थ समझ करके हमारा अगला एक क्षण जो है मरेंगे, जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसको इस भाव से भगवान की भक्ति में झोंक देना है, पे जाया नहीं करना है, नहीं तो अगला जन्म पता नहीं कुत्ता बिल्ली किसके में होगा। इसलिए भगवान के भजन में लगाना है। तो मेरे द्वारा अगर किसी के हृदय में कुछ चोट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा करना। मांसा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्ययैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम महापुराण की। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पर्सनली